दिसंबर के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग जितने भी लोग आए हैं सबका धन्यवाद है, स्वागत है। हॉस्पिटल में 600 कर्मचारी हैं, उसमें से यहाँ पर 30-35 लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये परसेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। 1000 में से एक व्यक्ति मेरे पास आता है, और अगर भक्ति वेदांत के 600 में से 35 आ रहे हैं तो परसेंटेज ज्यादा है, तो ये खुशी की बात है। लेकिन हम जानते हैं कि ये परसेंटेज और बढ़ भी सकता है, क्योंकि आप उन हजारों में से हो जो ऑलरेडी 1000 में से ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। तो संध्या जागृति कार्यक्रम ये सबके आध्यात्मिक आनंद के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए है, आध्यात्मिक पोषण के लिए है। और जब आत्मा भगवान के विषय में ज्ञान पाकर पुष्ट हो जाती है तब आत्मा भगवान की ओर बहुत जल्दी बढ़ जाती है। और ये महीना भी जो है दिसंबर का महीना बहुत ही पावरफुल महीना है। इस साल में अधिक मास आया, और अधिक मास आने की वजह से सारी चीज, सारे जो कार्यक्रम है वो एक महीना पोस्टपोन हो गया। तो कार्तिक महीने का अंत भी नवंबर के एंड में हुआ और मार्गशीर्ष की शुरुआत दिसंबर में। तो मार्गशीर्ष का महीना जो है वो बहुत पवित्र महीना है। कृष्ण कहते हैं कि भगवद गीता में कहते हैं मासाणाम मार्गशीर्ष हूं, सब महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। जैसे फूलों में मैं गुलाब हूं, प्राणियों में मैं सिंह हूं, आकाश के चांद और तारे हूं, वैसे महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। इसी मार्गशीर्ष महीने में सभी गोपियों ने भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था, उसे कहते हैं कात्यायनी व्रत। कात्यायनी देवी, पार्वती देवी को उन्होंने पूजा था, पूजन किया था, यमुना किनारे बैठकर वालुका के द्वारा देवी का मूर्ति बनवाकर व्रत रखते हुए, उपवास रखते हुए सभी गोपियों ने भगवान को पति के रूप में पाने के लिए इस महीने में 30 दिन तक ये व्रत किया था। साथ साथ में इस महीने में जीसस क्राइस्ट का भी जन्म होता है, 25 तारीख भगवान के मसीहा, भगवान के धाम से भगवान के पुत्र के रूप में भगवान का संदेश लेकर वो पृथ्वी पर आए, आज से 2000 साल पहले। और उन्होंने विश्व को प्रेम और त्याग का संदेश दिया, सबसे पहले प्रेम का संदेश दिया, सभी जीवों को भगवान की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रेरणा दिया। रूपा जी जीसस क्राइस्ट का कई बार उल्लेख करते हैं अपने किताबों में, कई बार प्रवचनों में करते हैं, किताबों में करते हैं, तो जीसस क्राइस्ट को अपना गुरु भी मानते हैं। और इस महीने में एक और विशेष घटना हुई है, वो ये है कि भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता इसी महीने में सुनाई। उसका नाम है, दिन का नाम है मोक्षदा एकादशी। एकादशी इस महीने में 23 दिसंबर को आने वाली है, जो इतवार को पड़ती है। 24 को एकादशी है, लेकिन 23 तारीख वो दिन है जिस दिन भगवान ने अर्जुन को भगवदगीता सुनाई। भगवदगीता एक ऐसा शास्त्र है कि पूरे विश्व के अंदर कोई धर्म ऐसा नहीं है या कोई जाति ऐसी नहीं, कोई लोग ऐसे नहीं जो भगवदगीता को मानते हैं। बाकी सारे शास्त्रों के ऊपर लोगों का मतभेद हो सकता है, लेकिन भगवदगीता ये भगवान का शास्त्र है, इस पर कोई किसी का विवाद नहीं है। सभी धर्म के लोग इसको पढ़ते हैं और सभी धर्म के लोग इसको भगवान के द्वारा दिया गया दिव्य शास्त्र मानते भी हैं। तो छोटी सी कहानी महाभारत में संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो आप जानते हैं महाभारत में कौरव पांडवों का भाइयों का परिवार था, और उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हुआ, उनके पिताजी उनका जो जन्म हुआ उसमें भी बहुत सारा समस्याएं थी, और जन्म के बाद में एक अंधे पैदा हुए, एक कमजोर पैदा हुए, और एक दासी द्वारा पैदा हुए, तो फिर राजा कौन बनेगा? इस दृष्टि से कमजोर आदमी को राजा बनाया गया शरीर से, फिर वो उसका देहांत हो गया तो फिर अंधे भाई को राजा बनाया गया। उसके बाद में उनके पुत्रों में से राजा कौन बनेगा? अंधे का पुत्र बनेगा कि जो मर गया उसका पुत्र बनेगा? इस पर विवाद हुआ। एक दुष्टों की पार्टी थी, एक सज्जनों की पार्टी थी। हमेशा होता है ना ऐसा, फिल्म में कैसा होता है, कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है। एक विलन की पार्टी होती है, एक हीरो की पार्टी होती है। इस तरह सज्जनों की पार्टी थी पांडवों की, और दुर्जनों की पार्टी थी कौरवों की। और आखिर में बहुत सारा संघर्ष बुझाने का प्रयास किया। भगवान स्वयं भगवान ने जाकर क्या कहते हैं उसको, दूत बने भगवान। दूत बनना बहुत छोटी चीज होती है, दूत कोई बड़ा दूत नहीं बनता है, एकदम छोटा आदमी जाकर दूत बनता है और आपका मैसेज वहां पहुंचाता है। भगवान दूत बने, उस दूत बनकर उन्होंने हाथ जोड़ के विनती किया, कम से कम 5 गांव दे दो, चलो पूरा राज्य मत दे दो, आधा राज्य मत दे दो, पूरा अधिकार तो इनका ही है, फिर भी आप नहीं मानते हो, 5 गांव दे दो 5 भाइयों के लिए, तो वो भी राज्य को तैयार है। 5 गांव क्या, एक सुई की नोक पर जितनी जमीन होती है ना उतना जमीन भी नहीं दूंगा मैं। तो फिर युद्ध होने के बाद हो गई कि युद्ध करना ही पड़ेगा, युद्ध में जीतेंगे वो राज्य कारोबार करेंगे, तो वाणी को जगा दीजिए आप। तो युद्ध जब हुआ तो सब लोग अपने सैन्य को लेकर, पूरे वर्ल्ड में जितनी सेना थी, जितने राज्य थे, जितने देश थे, वो कुछ यहां गए कुछ वहां गए, कोई भी ऐसा नहीं रहा था जो इधर भी नहीं उधर भी नहीं। एक ही बलराम जी थे, वो अपने चले गए बीच में से निकल के, उन्हें मुझे नहीं पढ़ना इसके अंदर। तो तीर्थ यात्रा को निकल गए और ऋषि मुनि जो भजन कर रहे थे वो इसमें नहीं थे, औरतें नहीं थी, बुढ़े नहीं थे और बच्चे भी नहीं थे, लेकिन जितने बाकी सब थे वो सब या तो इधर थे या उधर थे, सज्जनों में थे या दुर्जनों में थे, बस दोनों में से एक जगह। वो सब तैयारी करके चिलखत पहन के, शस्त्र लेके, रथ लेके, हाथी लेके, घोड़े लेके, गदा लेके, सब लेके जब तैयार हुए उधर, तो अर्जुन ने भगवान को कहा था कि आप मेरे साइड में आ जाइए। भगवान ने उनको बताया कि देखो मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसा युद्ध नहीं करने वाला हूं, या तो मैं ऐसे आऊंगा अकेले बिना शस्त्र लेके, और या तो मेरी सेना है, हाँ एक अक्षय सेना, मतलब कई लाख लोग होते उसके। भगवान की सेना का नाम था क्या? नारायणी सेना। और नारायणी सेना का मतलब क्या होता है? उसमें से कोई मर नहीं सकता है, कभी भी नहीं मर सकता, और इतने वीर होंगे वो कि बहुतों को मार सकते हैं, महारथियों को मार सकते हैं, उतने मरेंगे। तो भगवान ने कहा क्या चाहोगे तुम? मुझे चाहोगे कि मेरी सेना चाहोगे? तो दुर्योधन भी वहां पर था, वो भी वहां आया था, तो कि अच्छा है भगवान बोल रहे तुम, भगवान की सेना ही चाहिए, तो ये ग्वाले को बिना शस्त्र के लिए फायदा क्या है? शस्त्र तो उठाएगा नहीं, युद्ध नहीं करेगा, तो क्या करना है उसको लेके? सेना लेना ही अच्छा है, वो तो बिजनेस की बात समझता था अच्छी तरह से, इसको बिजनेस जरा ज्यादा ही अवगत था उसको। तो बिजनेस की दृष्टि से देखा जाए तो एक निहत्ता आदमी जो शस्त्र के बिना खड़ा है, युद्ध नहीं करेगा वो, उसका युद्ध में क्या उपयोग है? और एक तरफ उसकी सेना है अक्षौहिणी सेना। तो भगवान ने कहा कि अरे मेरा छोटा भाई है अर्जुन, उसका अधिकार पहला है मांगने का, तो अर्जुन तुम मांग लो। तो दुर्योधन ने कहा तो मैं तो पहले आया था, लेकिन भगवान ने कहा मेरे को छोटा है उसको पहले मांग ले। तो दुर्योधन को लगा रहे तो सेना ले लेगा, मुझे नित्य कृष्ण को दे देगा, तो मैं क्या करूँ उसको लेके। लेकिन उसको सरप्राइज देते हुए अर्जुन ने सरप्राइज दिया दुर्योधन को कि तुम मुझे अकेले चाहिए, बिना सेना के चलेगा मुझे। भगवान ने कहा सच बोल रहे हो, मेरी शस्त्र के बिना मैं आ सकता हूँ? बोले मुझे तुम्हारे सेना से क्यों मतलब नहीं, बिना शस्त्र के भी तुम चलोगे मुझे। तो अर्जुन मन ही मन में खुश हो रहे, अपने दुर्योधन जो है मन ही मन में खुश हो रहे, कितना मूर्ख व्यक्ति है, भला मेरा नंबर 2 नंबर में मुझे पूछने को मौका मिल रहा है, लेकिन फिर भी फर्स्ट नंबर वाले ने इतना गधा गधा का दिमाग चलाया है, बोला अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, तुम जो मर्जियां ले लो। दीपक आचरेकर, भगवान दीपक लगा रहे ज्ञान का, आप सुना नहीं इसे। तो फिर अर्जुन ने भगवान को ले लिया और दुर्योधन ने एकदम बड़ा ऊपर लेते हुए, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होने दो, बाकी बचाओ मैं ले लूंगा, ले लिया, युद्ध पे चले गए। युद्ध में जाने के बाद में इस साइड में कृष्ण की सेना युद्ध कर रही है, इस साइड में कृष्ण जो है योद्धा बनकर नहीं ड्राइवर बनकर आए, ड्राइवर बनकर, हाँ ड्राइवर कभी युद्ध नहीं करते, खाली यहाँ जाओ यहाँ जाओ, सीधे जाओ पीछे जाओ, घूम लो घास को, घोड़े को घास खिलाओ, चक्र में तेल डालो, इतना ही काम करते हैं, तेजी से जाओ स्लो जाओ बस यही काम करते हैं, रथ को नीचे लो रथ को ऊपर लो बस इतना ही काम करते हैं। तो लेकर आ गए अर्जुन ने कहा कि एक बार मुझे देखने दो, इतने विश्व भर के लोग इकट्ठा हो गए इधर, इतने सारे हमारे रिलेटिव्स हमारे रिश्तेदार हमारे फैमिली मेंबर सब लोग आ गए इसके अंदर, अभी याद भी नहीं कौन से इस साइड में कौन से उस साइड में, इतने लोगों ने अपना पक्ष जो है ना, कुछ लोगों ने दुर्योधन ने क्या किया कि अर्जुन के रिश्तेदार कुछ लोग आ रहे थे वो अर्जुन की पार्टी में आने के लिए आ रहे थे, तो इसने क्या किया उनको रास्ते पर ही जहां पर से आ रहे थे वहां तंबू डालना पड़ा एकदम बहुत जोरदार तंबू 22 स्टार तंबू डाल दिया, खाने पीने का रहने का आराम करने का सब कुछ इंतजाम कर दिया उसने, बोले आइए आइए यहाँ पर आराम कीजिए आप आगे बाद में जा सकते हो, और वो खाना पीना खिलाते हुए उनको पटा के अपने पक्ष में कर लिया। और क्षत्रिय लोगों का ऐसा होता है किसी का अगर मेहमान नवाज स्वीकार किया ना आपने, तो अभी तो आपके घर पे आया आपके घर में लड्डू खाया मैंने भोजन किया उसके बाद, और आपने कहा प्रभु जी हमारे लिए फोन करेंगे उसको जरा मेरा काम होना बाकी है जरा आप फोन करेंगे तो कर ले, आपने बोल सकते कि नहीं नहीं मैंने फोन करूंगा मैं क्यों करूंगा फोन, अभी आपने अभी अभी नमक खाया उसका तो अभी आपको नाम बोलने में इसकी जान होगी ना उसकी। तो वैसे ही दुर्योधन ने बड़े ही चतुरता से बड़े ही कुशलता से बड़े ही डिप्लोमेसी के साथ में मामा को बटा लिया अर्जुन के मंत्र वाला शल्य को बटा लिया, मामा पहुंच नहीं पाया अर्जुन तक बीच में उसको डिटूर कर दिया उसका, ये सब हुआ ऐसा मालूम पड़ा कि मामा जी अभी फंस गए बेचारे उधर चले गए क्या करें, तो मामा जी वहां पर बाधा करके आए फिर भी आके मिले, मैं तो जरा दुखी हूँ मैं उधर फंस गया अभी क्या करूँ जब तक वचन दे चुका हूँ मैं अभी, तो अभी तुम क्या चाहते हो, तो कृष्ण ने कहा कि तुम अर्जुन के मामा हो अल्टीमेटली तुम अर्जुन के मामा हो, मतलब वो माद्री थी ना माद्री नकुल सहदेव की माता जी उसका भाई था मद्र देश का शल्य राज, अभी तुम्हें काम करना तुमको क्या रोल मिला उधर, तो मुझे रोल ऐसा मिला है कि जब कर्ण जब युद्ध करने आएगा तो उसका सारथी बन के मुझे जाना है, कोई बात नहीं आप जाओ सारथी बनो नो प्रॉब्लम, खाली जब भी उससे बात करोगे ना तो उससे बोलना है आपको हे सूत पुत्र कर्ण, हे सूत पुत्र कर्ण, हे सूत पुत्र कर्ण, इसमें आपको ड्राइवर है तो समझा उसका नाम है से लक्ष्मण, तो आप बार बार बोलेंगे ड्राइवर लक्ष्मण ड्राइवर लक्ष्मण ड्राइवर लक्ष्मण, तो उसको काम लगेगा ना क्या मैं ड्राइविंग तो कर रहा हूँ ड्राइवर तो हुई मैं बार बार ड्राइवर 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 बोलने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा उसको दिल में ठेक होगी ना, तो वैसे यार कर्ण को बहुत दुख था कि मैं सारथी का पुत्र हूँ इतना वीर हूँ फिर भी सारथी का पुत्र हूँ, तो उसको बहुत दुख होता था हमेशा कि मैं सारथी का पुत्र क्यों इतना बड़ा मैं क्षत्रिय का तरह से युद्ध करता हूँ, मुझे कौरवों में से कोई मार नहीं सकता पांडवों में से भी कोई मार नहीं सकता इतना मैं बड़ा योद्धा हूँ, लेकिन बेचारा मेरा जो जन्म है ना वो सारथी के घर में हुआ इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ, कि उसको दुख था मालूम था इसलिए उसको बताया कि आप बार बार उसको सूत पुत्र कर्ण मतलब जो शूद्र होता है उसका पुत्र हो तुम ऐसे बार बार बोलोगे तो उसका जो है ना उत्साह उसका कम होता जाएगा हमेशा उसका उत्साह बढ़ेगा नहीं, और कोई बात नहीं युद्ध के अंदर भी आगे जाकर ये बात होती है कर्ण बार बोलते हैं अपने सारथी को बार बार मुझे सूत पुत्र करके क्यों पुकार रहे हो, तो कहते हैं कि सूत पुत्र हो ना तो क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको, हाँ सूत पुत्र हो इसलिए पूछ रहा हूँ पुत्र अगर नहीं तो क्षत्रिय पुत्र कहता आपको, लेकिन आप सूत पुत्र हो अभी कुछ आपको दुख हो रहा है क्या आप सुपुत्र हो ना, हाँ सुपुत्र हो तो दुखी मत हो ना सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अर्जुन ने और कृष्ण भगवान ने अपना काम जो है सही रूप से उसको निरुत्साही करने का काम अच्छी तरह कर दिया उसे, तो ये जब यहाँ से वहां पार्टियां बदल रही है तो अर्जुन ने सोचा की तरह एक बार देख लेते हैं अभी शुरू करने के पहले कौन इस साइड में है और कौन उस साइड में एक बार देख लेते हैं अपना पराया कौन है, अभी सब तो अपने ही है सब तो पराये भी है अपने भी है लेकिन अभी एक्चुअली युद्ध में अभी कौन पराये साइड में खड़ा है देख लेते हैं, ऐसे देख उद्देश्य से उसने कहा अर्जुन भगवान ने भगवान को हे भगवान मेरा रथ जो है ना वो दोनों सेना के बीच में लेके जाओ मैं देखूंगा अभी अच्छी तरह से यहाँ से वहां लेके जाओ वहां अच्छी तरह से, अर्जुन को लगा था कि थोड़ा सा काम है देख लूंगा और विचार हो जाएगा उधर, लेकिन उसको पता नहीं था कि उससे क्या होने वाला है क्या देखने वाला है और देखकर क्या उसके मन में परिणाम होने वाला है। देखा कि प्रतिपक्ष में उसके पूज्य पिता मां भीष्मदेव खड़े हैं शस्त्र तान कर तैयार। फिर उसके गुरुदेव जिससे उन्होंने गदा धनुष तलवार राजनीति धर्म सब सीखा उन्होंने, वो भी उनके सामने खड़े हैं। बस सब सौ भाइयों की फौज खड़ी है, कौरवों की, हाँ कजिन ब्रदर्स, मामा शकुनी भी उधर है, बहुत सारे लोग थे, बहुत लंबी लिस्ट है उधर, बहुत सारे लोग हैं, सभी बाय डिफॉल्ट उनके रिश्तेदार थे। कोई मामा का लड़का है, कोई लता का लड़का है, कोई इसका है, कोई उसका है, बहुत सारे लोग थे। सबसे ज्यादा देखे तो उसको बहुत द्रोणाचार्य और भीष्मदेव को, अरे मेरे वंदनीय, मैं तो उनको हमेशा दंडवत करता हूँ, उनके चरणों के रथ लेता हूँ, ऐसे गुरु को कैसा लड़कों से लड़ते। और जिसकी गोद में हमने बचपन गुजारा, उनके खंधों पर चढ़ते हुए, गोद में उनके हाथ में धड़कन खाते हुए, प्रेम से गुजारते हुए, गले लगते हुए, उनके गले पे शरीर पर उनके गोद में हम लोग बड़े हुए, ऐसे हम पितामह को कैसे युद्ध करेंगे उनके साथ। और अभी हम युद्ध नहीं करेंगे, बस हो गया, बस भगवान मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे राज नहीं चाहिए, ये सब लोग मरेंगे और सब ये सब भाई बहन गुरु पितामह मरने के बाद में मैं ये राज्य को क्या करूंगा, कैसे मैं इसको एंजॉय करूंगा, चांस ही नहीं है। और ऐसा राज्य सबको मार के, अपने रिश्तेदारों को मार के जो मुझे राज्य मिलेगा, मुझे राज्य चाहिए नहीं, तो भ्रष्ट राज्य होगा, ऐसे अपने को ही मार के मैं क्या करूँ, उसको किसके साथ मैं एंजॉय करूंगा, उसको सब अपने ही सब लोग, तो गुरु ना होते हुए, पिता मां ना होते हुए, राजा बन के करूंगा क्या। और एक बड़ा डायलॉग होता है, अर्जुन जी बोलते हैं कि मैं जंगल में जाकर भिक्षा करूंगा, फल मूल कंदमूल खाकर जीऊंगा, लेकिन तो राजा नहीं बनता, बड़ी परेशानी होती। ये लोग क्या सोच रहे हैं, पांडव लोग आएगा घूम के देख के आएगा, फिर चालू हो जाएगा, तो देख रहे हैं कि बैठ गया औरत में, पढ़ाई नहीं हो रहा है, और लोग सब टेंशन में, क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, युद्ध तो होगा कि नहीं होगा, तो बैठ कर क्या, तो उसको क्या हो गया है। इधर धृतराष्ट्र के साथ में उसका सारथी बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है, संजय। उसको उसके गुरु ने एक ऐसा सिद्धि दिया है, पावर दिया है कि तुम अपने घर में बैठोगे लेकिन युद्ध में क्या चल रहा है तुम दिखाई पड़ेगा, और जो अंधा तुम्हारा मालिक है उसको पता नहीं होगा कमेंट्री क्या चल रहा है। संजय बता रहे हैं कि अर्जुन बैठ गए अभी, तो वो धृतराष्ट्र पूछ रहे क्या हो गया उसको, लेकिन उसका मन गया कपटी बन, वो कहता है अच्छा उसने हार मान लिया क्या, बैठ गया, उसको युद्ध नहीं करेगा, मेरा बेटा राजा बन गया क्या, उसके मन में लड्डू खा रहे हो मन में। तो फिर वो बोल रहे कि कुछ कुछ अभी बोलने लगे हैं कृष्ण उसके साथ में, तो वो पूरा जो संभाषण है अर्जुन का और कृष्ण का अर्जुन के साथ, अर्जुन का कृष्ण के साथ जो संवाद है, डायलॉग है, वो पूरा वैसे के वैसे संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया एज इट इज। तो दो व्यक्ति ने उसको सुना, एक अर्जुन ने सुना और एक सुना धृतराष्ट्र ने, लेकिन जो अर्जुन में परिणाम हुआ वो धृतराष्ट्र में नहीं हुआ। ये बहुत समझने वाली बात है, तुम्हारा मूड कैसा है, तुम्हारी चेतना कैसी है, तुम्हारा मन कैसा है, इसके ऊपर तुमको जो ज्ञान दिया जाएगा वैसा परिणाम होगा। तुम जो एक साइंटिस्ट है, हाँ वो अपने प्रयोगशाला में एटम बॉम्ब का ज्ञान सीख रहा है, और एक अतिरेकी है आतंकवाद, वो भी अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर एटम बॉम्ब का ज्ञान सीख रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। एक आदमी एटम बॉम्ब का ज्ञान सीखेगा और पूरा इलेक्ट्रिसिटी और ये सब जो है विधायक कार्य करेगा, समाज कल्याण के कार्य, और एक आदमी वो मिलते ही जगह जगह पर एटम बॉम्ब स्पोर्ट करेगा, लोगों को मारने का प्रयास करेगा। तो ज्ञान जो है ना वो अच्छा या बुरा नहीं होता, वो ज्ञान को हम कैसे लेते हैं और कैसे उपयोग करते हैं उसके ऊपर ज्ञान का परिणाम होता है। धृतराष्ट्र का वो कपटी था, स्वार्थी था, पुत्र प्रेम में अंधा था, बस कैसे भी करके पांडव मर जाए और मेरा बेटा राजा बने, यही उसकी इच्छा थी। तो वो सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ ना अपना अपने आप बैठ गया, तो युद्ध करने के बदले में अच्छा ही हो रहा है, बिना युद्ध के हार मान रहे हैं तो मेरा बेटा वैसे ही राजा बन जाएगा, कितना अच्छा हो रहा है। और वो सुन रहे हैं कि कृष्ण ने क्या बोला, कृष्ण ने क्या बोला, कृष्ण ने क्या बोला, और एंड में वो बोलते संजय कि अभी अर्जुन खड़े हो गए, वो धनुष लेकर तैयार है युद्ध करने का, अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसे पूछ रहे हो, वाह ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब अपने आप युद्ध के न करके थे वो बैठ गया था, कितना अच्छा बैठा। कृष्ण जो है वो ऐसे हमेशा बीच में आते हैं। अरे मेरी पत्नी ने मेरे बेटे को कहा था कि तुम सब निर्वस्त्र होकर आ जाओ, तुम्हारा शरीर में वज्र का कर दूंगा, तो बीच में कृष्ण आ गया था। जैसे माता ने कहा था गंधारी ने कि भाई तो युद्ध होने वाला है तो मुझे अभी तुमको बचाना पड़ेगा, तो मैं आजन्म पतिव्रता स्त्री हूं, आम बन करके मैंने पति का अनुगमन किया है, तो मुझे बहुत शक्ति है, तो तुम क्या करो निर्वस्त्र गंगा में स्नान करके पूरा कपड़ा उतार के आ जाओ, जैसे तुम्हारा जन्म हुआ था वैसे आ जाओ। दुर्योधन गया नदी में स्नान किया, पूरा वस्त्र उतार के ऐसे आ रहा था नग्न अवस्था में, और भगवान कृष्ण जानते थे कि ये तो शिव भक्ति की पतिव्रता अंधारी देवी है, अगर वो आंख खुलेगी और उसकी दृष्टि पड़ेगी उस पर तो वज्र सब शरीर बन जाएगा उसका। वज्र का मतलब क्या होता है? गदा धनुष अस्त्र शस्त्र का कोई परिणाम नहीं होगा उसके, कुछ भी नहीं होगा उसको, ना दर्द होगा ना कुछ हानि पहुंचेगी, अजय हो जाएगा, कोई मरेगा ही नहीं। कृष्ण भगवान समझ गए अरे ऐसा हो गया तो फिर वो नहीं मरेगा तो अधर्म का राज्य बनेगा, तो अधर्मी आदमी है। तो कृष्ण भगवान जंगल में पहुंच गए, उसके रास्ते पर आकर बोले अरे तो दुर्योधन क्या है, क्या है ये, व्हाट इज दिस? तो थोड़ा शर्मा गया, इसका ऐसा है कि मेरी माता ने बुलाया मुझे, ऐसा माता का आदेश है। अरे पगले माता का आदेश है तो क्या हुआ, वो तो पतिव्रता स्त्री है तुम्हारी माता, तुम्हारी माता को तो क्या हुआ, शिव भक्त नहीं पतिव्रता स्त्री है, कम से कम अपने जो गुप्तांग है उसको तो ढक के जाओ, कम से कम उसका आदर रखने के लिए, इतनी बड़ी महान माता है तुम्हारी, ये तो बात सही है। थोड़ा तो उसने क्या किया, वस्त्र तो है नहीं, तो उसने पेड़ के पत्ते निकाले और अपना गुप्तांग ढक लिया और गया माता के पास। तो माता ने कहा पुत्र आ गए तुम, जैसे मैंने बताया वैसे आया, पट्टी खोल दी, पट्टी खोल दिया, इसको ऊपर से नीचे तक देख लिया, लेकिन जब उसने देखा कि गुप्तांग उसने ढक दिया है तो पूरा शरीर वज्र का बन गया, लेकिन गुप्तांग जो है उसकी जंगल का भाग जो है वो दृष्टि नहीं पड़ी उसके ऊपर, वो कोमल रह गया। तुरंत उसने अपने आंखों को पट्टी वापस बांध लिया, लेकिन पुत्र तुमने जिंदगी भर मेरी बात कभी मानी नहीं, कम से कम आज तो मान लेती मेरी बात, जैसे मैंने कहा था उसको मान लेती, अब तुम्हारा वो हिस्सा कमजोर रह जाएगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण भी वही हिस्सा बनेगा, तुमने ऐसा क्यों किया? कृष्ण मिले रास्ते पे, तो उसके बाद चली अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने उसको कॉल किया। तो दुर्योधन के पिता को मालूम है ये सब, बोले यही कृष्ण है कि वो अपने आप युद्ध समाप्त हो रहा था, उसने उसको उकसाया, उसको खड़ा कर दिया, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पुत्र जो है सब अधर्मी है, सब पापी है, दुष्ट है मेरे पुत्र जो, और वो सज्जन है, धर्मशील धर्मपरायण है, और सत्य के पक्ष में जो काम करते हैं उनकी हमेशा विजय होती है, उसको पता है, भले वो कपटी है लेकिन उसको ज्ञान तो है ना, उसको डर है उसको कि अरे युद्ध करेंगे तो धर्म के प्रभाव से ही लोग जीत जाएंगे, और वो जो कृष्ण है वो उनके पक्ष में है, उनको पता था। दुर्योधन की इतनी अकल नहीं थी, लेकिन उसके पिता को थोड़ी अकल थी, पता था उसको कि कृष्ण जो है ना वो बिना शस्त्र लेकर ही गड़बड़ करेगा, हमको पता था। तो कृष्ण भगवान ने ऐसा निराश अर्जुन को ऐसा क्या बताया, दोबारा खड़ा हो गया, वो कह रहा था कि मेरा जो चर्म है ना, चर्म जल रहा है, मेरे हाथ से मेरा गांडी धनुष जो है वो तो विश्व पूरा डरता है उसके आवाज से, वो मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है कुछ, सब सोच बंद हो गए मेरे, मैं अभी युद्ध नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं यूजलेस हो गया। ऐसा होता है भ्रम, भ्रम का मतलब क्या है, भ्रम होने से सबसे बड़ी बुद्धि भी जो है भ्रष्ट हो जाती है, सबसे बड़ी शक्ति जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, हम भी नहीं आ सकते, जो 6 फुट का 150 फुट का आदमी है हाँ जा रहा है ऐसा रास्ते पे, तो देख के वो डर लोग डर लग रहे, डर लग रहा है, जैसे जो वो डर गया तो खुद जो खुद डर गया तो क्या कर सकते, उसका इतना बड़ा पार शरीर तो क्या लाभ है उसका। हमारे महाराज के किताब में कथा आती है, ये 6 फुट 2 इंच का कम से कम 125 किलो का एक बहुत बड़ा पहलवान आदमी जो है ना, वो बाजार से कुछ खाने पीने की वस्तु लेकर थैली में लेकर जा रहा, तो एक बंदर आया, बंदर सामने से, कितना होगा 2 फीट का होगा, उसका 25 किलो वजन होगा, लेकिन बंधन को देखते ही इस 125 किलो के आदमी की पूरी डर से एकदम पागल हो गया। बंधन ने इसको छक्का मारा, उसके हाथ से सब कुछ छीन लिया और दूर जाके पेड़ बैठा और सांप खोल के आराम से खाया उसने। पूरे जिंदा रह गया ऐसा, एकदम ऐसा काम रहा था 125 किलो का आदमी। उधर से गांव का एक लड़का आया 10 साल का, उसका वजन में हुआ 25-30 किलो। उसने है ऐसा किया, बंदर भाग गया, थैली लेके वापस आके दाके दिया उसने 125 किलो आदमी में। इतना सा लड़का, पतला सा एकदम, ऐसा आवाज किया तो बंदर उसको लेके भाग गया। इतना भी सामान खा लिया उसने, छोड़ के पूरी थैली वापस आके इस पहलवान को दे दिया उसने। कहने का मतलब क्या है, अगर आदमी कितना भी बड़ा और शक्तिशाली बुद्धिमान हो लेकिन अगर डर जाता है ना, वो पूरा फेल होता है मामला उसका। ऐसा ही अर्जुन का हो गया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था वो, विश्व का नंबर वन चैंपियन था वो, धनुष बाण के अंदर किसी से आपसे हारा नहीं था वो लाइफ में, इतना पावर था उसके अंदर। उसके धनुष की आवाज से पूरा देवता लोग भी कांपते थे, इतना उसका अंदर शक्ति थी। ऊपर से वो देवता लोग में जाके अस्त्र विद्या भी सीख के आया था पूरा दिव्यास्त्र। ऐसा व्यक्ति केवल भ्रम में आकर निर्बल हो गया, बैठ गया नीचे, ना उसकी बुद्धि काम कर रही है, ना उसके हाथ से धनुष उठ रहा है, उसका हाथ कांप रहा है, धनुष फिसल रहा है, सारे दिव्यास्त्र सीख के फायदा क्या, कुछ याद नहीं आ रहा है उसको, रो रहा है वो बेचारा। तो ऐसे निराश हो गए कोई आदमी को, हमारे मेडिकल लेवल में क्या कहते हैं, डिप्रेशन में गया। डिप्रेशन में जाने के बाद ना बुद्धि शक्ति का कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बड़ा आदमी जिसके ऊपर सबकी आंखें टिकी हुई है कि ये युद्ध करेगा, धर्म का राज्य जीतेगा, धर्म का राज्य स्थापन करेगा, खुद राजा बनेगा, सबको सही रास्ते में चलाएगा, हमारा नेता है, हमारा हीरो है, वो ही बैठ जाए। तो भगवान ने जो उसको सुनाया उसको कहते हैं भगवत गीता, यानी कि भगवान ने गाया हुआ गीत, इसलिए भगवत गीता कहते हैं उसको। जो भगवान ने कहाँ गाया कि किसी की शादी में अच्छे आनंद के मौके में जब फूल गिर रहे हैं, सब लोग आनंद मना रहे हैं, वहां पर गीत नहीं गाया, युद्ध भूमि में गाया, इमरजेंसी में गाया, जब विश्व का कल्याण होगा कि नाश होगा इसका फैसला होना है, ऐसे घटना में बीच में भगवान ने गाया। तो इंपॉर्टेंट होगा ना वो, एंड मौके पर किसी ने आपको सलाह दिया तो कितना इंपॉर्टेंट है उसको सलाह, वो इतना इंपॉर्टेंट सलाह भगवान ने उनको दिया, इतना अच्छा ज्ञान दिया उसको कि वो तभी नहीं लेकिन आज तक अनंत काल तक लोगों को उसका लाभ हो रहा है वो ज्ञान सुनकर। जो पहले बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा, वो एंड में क्या बोलता है, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा परिश्चय वचनम तव, अभी मेरा मोह नष्ट हो गया है, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, पूरा नॉलेज मुझे वापस अभी याद आ रहा है, स्मृतिर्लब्ध्वा स्मृति का मुझे लाभ हो रहा है, करिष्ये वचनम तव, जैसे आप बोलोगे वचनम तव करिष्य वैसे मैं कहूंगा, अब इसके आगे जो आप बोलोगे वैसे मैं कहूंगा। तो ऐसा भगवान ने क्या बताया उसको जिससे वो एकदम ये एंड से ये एंड में आ गया। अभी मैं बाद में बात बात नहीं करूंगा, ये वो क्यों जो आप बोलोगे वैसे करो, चलो उठो उत्तिष्ठ जागृत हो, मां मनुष्य करो युद्ध, चलो मेरी याद करो, युद्ध करो, आपकी समस्याओं को बाजू में रखो, धर्म के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवद गीता में 5 विषय की भगवान ने चर्चा किया है। 5 विषय कौन से हैं, किसी को याद है, कोई जानता है इसमें 5 विषय कौन से हैं? 5 मेन विषय की भगवान ने चर्चा किया है। एक विषय है उसका ईश्वर यानी भगवान कौन है, दूसरा विषय है जीव यानी हम लोग सब लोग हम कौन है इसका चर्चा किया है, तीसरा चर्चा किया है प्रकृति यानी नेचर, जो हम देखते हैं ना प्रकृति वो क्या है इसके बारे में चर्चा किया है, चौथा विषय है काल यानी कि समय, आपने महाभारत देखा है ना सीरियल, बार बार वो विष्णुदेव क्या कहते हैं, तुम्हारे सवाल लेकर तुम समय के पास जाओ, तो वहां है समय, वहां मिलना है उसको, बता दे हम मिल के आ गए उसको, क्योंकि इतना क्यों आगे बढ़ रहा है समय, रुकता क्यों नहीं है, उनको पूछना है तुम्हारे आगे बढ़ने से हम बूढ़े हो जाते हैं, तुम्हारे आगे बढ़ने से हम अमीर का आदमी गरीब हो जाता है, तुम्हारे आगे बढ़ने से गरीब आदमी अमीर हो जाता है, तुम्हारे आगे बढ़ने से सुंदर आदमी मूर्ख बन जाता है, तुम्हारे आदमी आगे बढ़ने से जवान आदमी बूढ़ा बन जाता है, तुम्हारे आगे बढ़ने से जीवंत आदमी मर जाता है। तो क्यों आगे बढ़ते हो मुझे पूछना है, तुमको बार बार पूछ रहे हैं, तुम्हारे सवाल को लेकर समय के पास जाओ। तो ये काल जो है, ये क्या चीज है काल, इसके बारे में वर्णन किया है भगवान ने स्वयं। तो कहते हैं कालोस्मी, ये काल स्वयं मैं हूं, जो व्यक्ति मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं स्वयं आता हूं प्रेम से, जो मेरे भक्त व्यक्ति भक्त नहीं है उनके लिए मैं काल के रूप में आता हूं, सब कुछ छीन लेता हूं। और लास्ट क्या विषय है, कर्म। कर्म के बारे में चर्चा करेंगे, बताया कि कर्म क्या चीज है, कर्म के व्याख्या क्या है, कितने टाइप के कर्म होते हैं और कौन से टाइप के कर्म का क्या क्या परिणाम होता है, कौन से फल मिलते हैं, इसके बारे में चर्चा किया है। ईश्वर, जीव, काल और प्रकृति, हाँ याद रहेगा आपको सबको। हाँ ये मत समझो कि हम तो क्या पढ़े लिखे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्ञान सबके लिए है, ऐसा नहीं कि डॉक्टरों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए ज्ञान दिया गया है, ओपन है। क्या बताया मैंने, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, चार हो गए ना, ये चार जो है ये कॉन्स्टेंट है, ये बदलते नहीं है। ईश्वर वही है, जीव भी वही है, प्रकृति भी वही रहती है, काल भी वैसे रहता है, बदलता नहीं है, अपना काम वैसे ही करता है। बदलने वाली एक ही चीज है, वो क्या है, कर्म। पांचवी वस्तु है बदलने वाली, आपने अगर अच्छा किया अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा किया तो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका परिणाम बदल जाएगा, और वो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। कर्म क्या करना है, अच्छा करना है बुरा करना है, वो क्या होगा उसका, कौन से कर्म करने से कौन सा फल मिलेगा, कौन से कर्म करने से काम पहुंचेगा आदमी, तो सारा वर्णन भगवान ने भगवद गीता में किया है। तो ये पांच जो विषय है उसकी विस्तार रूप में चर्चा करने के बाद में अर्जुन समझ जाते हैं कि मेरा जो ये कुछ मैं सोच रहा हूँ ये सब भ्रम है। तो अर्जुन अब यहाँ पर है, नीचे स्तर पर है, भ्रम के कारण उसको भगवान उठाते हैं और उच्च स्त्री में लेके आते हैं। यहां तक कि उसका जो स्वार्थ था वो युद्ध के लिए क्यों प्रवृत्त हो गया था, उसको लग रहा था मेरा पत्नी का अपमान किया गया, उसका बदला लेना है मुझे, हम सब भाइयों को जो हमारा हक था वो नहीं दिया गया, उसके लिए मुझे युद्ध करके हक अपना लेना है, अरे हम सब भाइयों को जलाने का प्रयास किया उसका बदला लेना है, अरे हम सब भाइयों को राज्य से भ्रष्ट करके वनवास में भेजा गया, हम लोग क्षत्रिय थे, राजपुत्र थे, राज का आनंद लेने के योग्य थे, फिर भी हमको छल कपड़ करके जंगल में इतना दिन रहने को बोला, ये सब का उसको गुस्सा था, बदला लेने की भावना थी उसके अंदर, लेकिन भगवान ने जो बताया इतना श्रेष्ठ बताया उनको कि सब बदले की भावना अर्जुन के मन से नष्ट हो गई। भगवान ने कहा ये बदला बदला जो है ना तुम्हारा निजी रोग है, तुमने अपना स्वार्थ बना के रखा है कि तुमको ऐसे हुआ ऐसे मुझे ऐसे करना है, और मेरी पत्नी का अपमान हुआ, मेरे बच्चों का ये हुआ, मेरे ऐसा हुआ, मेरे वैसा हुआ, मुझे कष्ट हुआ, ये मैं तो बोल रहे हो ना कि पूरी जिंदगी मैं नहीं है, इसके आगे भी जिंदगी है, तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य है इसके परे है, तुम खुद के लिए मत लड़ो, धर्म के लिए लड़ो, भगवान के लिए लड़ो, मेरे लिए लड़ो, माम अनुस्मर युद्ध, मुझे स्मरण करके मैं क्या चाहता हूं ये सोच के वो तुम तुम्हारा कर्तव्य हो, और ये तुम मेरा तुम्हारा द्वेष बदला ये सब भावना को छोड़ दो तुम। तो वो समझ जाते हैं कि विश्व का राज्य धर्म के अनुसार चलाना ये मेरे बदले से भी ऊपर है, चलो मैंने इनका मान के बदला ले लिया मेरा काम हो गया, लेकिन विश्व का राज्य चलाना है धर्म के अनुसार वो बड़ी जिम्मेदारी है, ये बदला बदला लेना जो है वो छोटी जिम्मेदारी है, परिवार के अंदर सीमित है, हमारे अंदर का मामला है, लेकिन मुझसे भगवान ने बताया तुमसे मुझे उम्मीद है तुम राजा बनोगे तो धर्म के अनुसार राज्य करोगे, इतनी सारी करोड़ों की जनता विश्व में है वो तुम्हारे आदेश में चलेगी, आनंद से रहेगी, भगवान का भजन करेगी, जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त करेगी, भगवान के धाम में प्रवेश करेगी तुम राजा बनने के बाद में, इसलिए तुम छोटे छोटे बातों को लेकर इतना संकुचित मत बनना, नैरो माइंडेड पर्सन महात्मा बनो, संकुचित मत बनो, मेरा बदला मेरा अपमान हाँ मेरे नुकसान किया गया उसका बदला लेना है मुझे, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं उसमें मत फंसो, तुम धर्म के लिए खड़े हो जाओ। धर्म के लिए युद्ध करो, सबको छोड़ के मेरी इच्छा के अनुसार काम करो, तब जाके तुम्हारा स्वार्थ भी पूर्ण हो जाएगा और परमार्थ भी पूर्ण हो जाएगा। तो उसमें से एक विषय की चर्चा हम करेंगे, भगवान ने क्या बताया। भगवान ने कहा एक होता है कर्म, होता है हमारा कर्तव्य होता है, जैसे कि कोई माता है यहाँ पर, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई बहू है, कोई डॉक्टर है, कोई समाज का नेता है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ डॉक्टर है और कुछ है, अपने अपना जन्म के अनुसार अपना अपना कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, वो पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका ड्यूटी है वो करना ही आपको, उसको कर्म कहते हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। और एक होता है विकर्म, विकर्म मैंने जो आपको नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी, जो पाप के वर्ग वर्ग उसका वर्गीकरण होता है, वो क्या है विकर्म, मतलब जो आपको नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हम किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, बे मतलब की व्यभिचार नहीं करना चाहिए, विवाह के बिना किसी का संबंध नहीं करना चाहिए, प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए किसी जीव की, कोई नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं करना चाहिए, भगवान का द्वारा दिया गया प्रॉपर्टी को ऐसा उड़ाना नहीं चाहिए, सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए, किसी को दिशा भूल नहीं करना चाहिए, मिसगाइड नहीं करना चाहिए, बहुत सारे पाप कर्म है, उसको विकर्म कहते हैं। तो विकर्म करने से उसका दंड मिलता है, उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो भगवान ने कहा जो कर्म करोगे अच्छे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन वो फल मिलेगा तो भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर अच्छा कर्म किया तो उसका फल भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा आपको, उसका लिस्ट है आपको देने का है। बुरा कर्म करोगे अलग से तो बुरा कर्म का फल भोगने के लिए भी आपको आना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको मुक्त होना है यहाँ से तो क्या करना होगा, बोले अकर्म करो। अकर्म का मतलब क्या है पूछा उन्होंने, अकर्म का मतलब क्या है, बोले अकर्म का मतलब वो है वो कभी भी खुद के लिए नहीं करते, निस्वार्थ रूप में केवल भगवान के आनंद के लिए जो कर्म करते हैं उसको अकर्म कहते हैं। ऐसे अकर्म का कोई फल नहीं होता, ऐसे अकर्म करने से कोई उसके फल में बंधा नहीं जाता, उस बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म करने से जो फल मिलता है उससे बंधन से हम बंधे जाते हैं, उसको भोगने के लिए आना ही पड़ता है, लेकिन अकर्म करेंगे तो उस कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, हम सब लोग खाते हैं, वो भी एक कर्म है ना, हम भोजन कर रहे हैं, करना ही है, उसके बिना कैसे जिएंगे हम, तो भोजन करना ही है शरीर को चलाने के लिए, तो इस कर्म को अकर्म कैसे बनाना है, रास्ता बनाया उसका कि वही खाओ जो आपके लिए योग्य है, नंबर वन, जो प्राणियों के लिए योग्य वो मत खाओ, जो शेर के लिए योग्य वो मत खाओ, इंसान के लिए कौन सा योग्य दिया है, ईशावास्य विदम सर्वम यत् कृत्या जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो तुम्हारे भोजन के लिए दिया है वही खाओ, नंबर वन। और नंबर टू, तुम्हारे लिए जो दिया गया है वो तब तुम खाओगे उसके पहले मुझे अर्पण करो, मुझे अर्पण करोगे थैंक यू बोलकर, फिर प्रसाद के रूप में खाओगे तो उस अन्न के कर्म से तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे आपको धन कमाना ही है अपने शरीर को चलाने के लिए, तो उसको ऐसे अकर्म कैसे करना है, भगवान का भक्त बन के भगवान के भक्ति के लिए जीवन को चलाना है। जैसे आपको टूर जाना है, घूमने की वो इच्छा है, तो कोई बात नहीं, आप भगवान के धाम चले जाओ, टूर पर चले जाओ, उत्तरनाथ चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, आपको घूमने का भी हो जाएगा, दिशा देशभक्ति भी हो जाएगा, समय भी बदल, थोड़ा टाइम पास करने को मिलेगा आपको, थोड़ा सा बोलते मराठे कहते हैं विरंगुड़ा, विरंगुड़ा यानी मनोरंजन, मन के लिए दिल बहलने के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी, साथ साथ में भगवान का भी ध्यान दर्शन होगा, कथा सुनने को मिलेगी, दर्शन भी मिलेगा। या तो कुल्लू मनाली जाओ, दार्जिलिंग जाओ, बर्फ देख के आओ, फिर वहां भगवान की यादें आएंगी तो वहां पर सब कर्म लगेगा, और यहाँ पर जाओगे तो भगवान के द्वारा अकर्म में लिप्त हो जाओगे, अकर्म में आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ऐसे हर काम जो हम खुद के लिए कर रहे हैं वो तो भगवान के लिए करके उसको हम अकर्म बना सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा, भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुमको युद्ध करना है, पहले तुम खुद के स्वार्थ के लिए, बदला लेने के लिए वगैरह 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 युद्ध करने वाले थे, अभी तुम मेरे लिए युद्ध करो, अपना पत्नी का अपमान हुआ, अपने बच्चे का ये हुआ, मेरे राज्य का ये हुआ, ये सब बाजू में रखो उसको, और मेरे लिए जिस काम के लिए मैंने युद्ध को रचाया है, इसको जिस उद्देश्य से मैं युद्ध करवाने जा रहा हूं तुम्हारे बीच में, धर्म का राज स्थापन करने के लिए, जिसके लिए बार बार मैं आता रहता हूं, धर्म संस्था पदार्थाय संभवामी युगे युगे, मैं बार बार क्यों आता हूं युग युग में धर्म को स्थापन करने के लिए, ये जो मेरा काम है वो तुम मेरे लिए करके अभी दिखाओ, खुद के लिए युद्ध मत करो। त्वाम अनुस्मरण युद्ध च, ऐसा नहीं बताया, माम अनुस्मरण युद्ध चलता है, मुझे स्मरण करके मैं क्या चाहता हूं ये सोचकर युद्ध करो, तुम क्या चाहते हो ये सोचकर युद्ध मत करो। तो भगवान ने उसको कर्म से अकर्म के स्तर पर ला दिया और उसके बाद में उसको वो बात जची भी नहीं हुई, फिर भी उसने भगवान के आइडिया से युद्ध किया। फॉर एग्जाम्पल, जब कर्ण को मारने का समय आया तो युद्ध का लॉ क्या बोलता था, लॉ ऑफ फायर वॉर, युद्ध का जो संहिता है ना, युद्ध में नियम संहिता, वो क्या बोलती थी कि अगर योद्धा कोई निशस्त्र होगा, अगर योद्धा कोई रथ पर नहीं होगा, अगर उसका पहिया जमीन में फंस गया होगा, वो युद्ध नहीं करता होगा तो उस पर वार नहीं करना है। उसको सावधान बोलकर ही, जब वो सावधान होने के बाद शस्त्र उठाएगा, रथ पे जाएगा, वो भी खड़ा हो जाएगा, तब उसे युद्ध करना है। पूरी उल्टी घटना थी ना, वो तो रथ से नीचे उतर गया था, उसका रथ का पहिया भी जमीन में फंस गया था, उसके हाथ में शस्त्र भी नहीं था, पर वो सावधान भी नहीं था। भगवान ने कहा उस पर बाण चलाओ, तो अर्जुन ने कहा ये सही नहीं है, वो वेग में कायर हूं मैं, उसको वन टू वन बैटल में उसको मैं मारना चाहता हूं, ताकि वर्ल्ड को ये साबित हो जाए कि मैं श्रेष्ठ धनुधारी हूं कि वो श्रेष्ठ योद्धा है। मित्र बोलेंगे तुमने क्या उसको छल से मारा, मुझे क्या कीर्ति मिलेगी। भगवान ने कहा तुम्हारी कीर्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मरना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर जिएगा ना, याद है ना, इसी ने तुम्हारे पत्नी को वेश्या कहा था, याद है ना, बोलना मत इस वाइट लाइफ में, इसी व्यक्ति ने तुम्हारी पत्नी को घर सभा के अंदर वेश्या करके पुकारा था, इसी व्यक्ति ने तुम्हारी पत्नी को ये कहा था कि ये अगर 400-500 आदमियों की पत्नी भी बन जाए तो क्या खराबी है, तुम लोग सब लोग काट लो उसको पत्नी के रूप में। इसी व्यक्ति ने तुम्हारी पत्नी का जब अपमान हो रहा था तो जोरों से हंसी ठहाका मार के हंसी मारी थी उसने, और इसी व्यक्ति ने कई अधर्म के कार्य किए, और ये बहुत पावरफुल योद्धा है, अगर ये जीवित रहेगा ना तो तुमको भी मार सकता है। अभी तुम्हारा अहंकार कितना बड़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मरना जरूरी है, और अभी अगर तुम नहीं मारोगे तो कल तुम्हें वो मार देगा, तुम मरोगे तो तुम धर्म का राज्य नहीं चला सकते हो। मुझे ये इच्छा है कि तुम जीवित रहो, युद्ध जीतो और राजा बनो और धर्म के अनुसार राज्य चलाओ, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, इसलिए तुमको क्या लगता है ये मत सोचो, अभी बाण चलाओ। तो भगवान ने तुमने बाण चलाया, मतलब क्या, करिष्ये वचनं तव, उसकी इच्छा देके बाण नहीं चलाया, ये सही नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट, ये भगवान की इच्छा के बाण चलाओ, तुम चला, मतलब स्वार्थ के लिए जो करना चाहता था वो छोड़ दिया उसने, भगवान के लिए जो करना चाहिए वो उसने किया, यही अकर्म है। अपनी इच्छा को बाजू में रखकर भगवान क्या चाहते हैं वो मेरे मन के खिलाफ क्यों ना हो वो करना है। कई बार जीवन में ऐसी संघटना, कई घटनाएं हमारे जीवन में आती है, हमको कुछ अलग करना होता है, लेकिन गुरु का आदेश होता है, गुरु का आदेश जो है उसको बोलो, बोलो बोलो, फिर भी बोलो, हाँ बोलो, बस छोड़ो अभी आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस तरह से भगवान ने भगवद गीता में अपने स्वार्थ को लेकर जो कर्म करते हैं उसको छोड़कर भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म कैसे करना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान दिया, 18 अध्याय 700 श्लोक। और ये जो मनुष्य जीवन है ये वो समझने के लिए, अगर आप होते होगे अरे इतना बड़ा गीता है हमने पढ़ा ही नहीं, तो और वैसे भी हमारा भारत का यह सबसे बड़ा शास्त्र है, इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, उसको वो संस्कृत में है, वो डिफिकल्ट है, समझ नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखे, एक लाइन में मीनिंग समझाया आपको क्या कहना चाहते हैं, वो इतना डिफिकल्ट था उसका अनुवाद, समझ में नहीं आया तो उसने पूरा उसका एक्सप्लेन भी किया, तात्पर्य भी दिया, थोड़ा डिटेल में समझाया कि इसमें से भगवान क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं, इसका लिंक पहले वाले से कैसा है, इसका लिंक आगे वाले से कैसा होगा, ये पूरे चैप्टर में क्या बताना चाहते हैं, वो अगले चैप्टर में क्या बताएंगे, पहले छः में क्या बताया, बाद में छः में क्या बताया, लास्ट में छः में क्या बताया, उसका सार क्या है, सब समझा दिया उन्होंने। 700 श्लोक को इतना बड़ा किताब बनाया और सिंपल और सिंपल और सिंपल मतलब क्या शब्दों में सब समझाया। आप बोलेंगे तो उन्होंने इंग्लिश में किया था, आपको इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके भक्तों ने और कृपा किया, उनके शिष्यों ने उसको इंग्लिश में से हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, रशियन, जर्मन, इंग्लिश और क्या बोले हिब्रू, पर्शियन, उर्दू में भी लिखा, अरबी में भी लिखा, बोलो आप सोचो, भगवद गीता अरबी में भी है, और अरबी में गीता पढ़कर कुवैत के और दुबई के और मस्कट के लोग भक्त बने हुए हैं, इसको अंदर दीक्षा लेके उनका भी अमुक तमुक दास नाम हो गया है, कितनी पावरफुल चीज है ये। हाँ अरबी पढ़ने वाले लोग मुसलमान होते हैं ना, लेकिन जो कुवैत की राजा की कन्या है, राज कन्या, वो इस्लाम के गुरु की शिष्या है, उसको आप मिले हैं पुणे के अंदर, बिल्कुल टोटल हरे कृष्णा, पहला नाम कुछ था उसका, अभी तो प्रभु दासी हो गई किसी गुरु की शिष्य है। तो वो जो ज्ञान था जो भगवान ने संस्कृत में दिया था, वो प्रभुपाद ने पहले इंग्लिश में करके उसको अनुवाद किया, तो तात्पर्य भी लिखा, फिर आज 80 भाषाओं में वो भगवद गीता अनुवादित की गई है। तो आप लोग ये बोल ले सकते हैं, आप लोग ये बोल ले सकते हैं कि हमको नहीं समझता है, आपको समझेगा क्यों नहीं समझेगा, भगवान को वंदन करके गुरु को वंदन करके उसको पढ़ना आरंभ करना चाहिए, तो जब वैसे आप पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, चाहे आप अंगूठा छाप भी होगे ना तो थोड़ा बहुत पढ़ने को आता होगा आपको, तो पूरा भगवान को क्या बोलना है आपको समझ में आएगा, क्योंकि भगवान ने बताया है कि मेरी द्वारा बताए गए गीता समझने के लिए पंडित होने की कोई जरूरत नहीं है, जो PhD है संस्कृत में MA कर चुका है और कुछ लिटरेचर में कुछ PhD किया हुआ है, ऐसा आदमी को गीता समझाने के लिए मैं बताया और किसी समझ में नहीं आया है, आम आदमी का काम नहीं है ये, खाली PhD लोगों का काम है, जो ब्राह्मण बन के आए हैं जो बहुत होशियार है उनके लिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा भक्ति चेती सखा चेती रहस्य एतद उत्तमम्, ये जो रहस्य में बात मैंने बताई है ये उसी के समझ में आएगी जो मेरा भक्त है, तो पंडित होगा, विद्वान होगा, बलवान होगा, सुंदर होगा, उसको समझ में नहीं आएगा, पढ़ा लिखा होगा भी समझ में नहीं आएगा, जिसके हृदय में भक्ति होगी मेरे लिए उसको ये रहस्य जो है वो तुरंत समझ में आएगा, तो भगवान ने ही बता दिया उसका व्याख्या किसको समझ में आएगा। तो आप बोलेंगे मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं तो पढ़ी ही नहीं हूँ, सुन में नहीं गई, समझ में नहीं आता है, मैं मैथ्स में तो 0 मार्क लाती थी, भाषा में मेरे को भी बहुत पास होते होते मैं करती थी, ऐसा बोलेंगे आप, लैंग्वेज मेरा वीक था, साइंस भी बहुत वीक था मेरा, मैथमेटिक्स भी वीक था, मैं क्या समझूंगी गीता क्या है, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा जिसके हृदय में प्रेम और भक्ति है मेरे लिए वो मेरे ये वचन आसानी से समझ सकता है। इसका एक उदाहरण है, साउथ इंडिया में ब्राह्मण था, ब्राह्मण था तो लेकिन वो अनपढ़ था, कोई स्कूल गया नहीं, उसके गुरु ने उसको बताया कि तुमको रोज गीता पढ़ना है, आदेश दिया तो उसको पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने को नहीं आता है, उसको क्या कर रहा है वो रोज मंदिर में जाकर गीता खोल के बैठा है, तो लोग उसको हंसते थे, देखा है यार अनपढ़ आदमी क्या गीता पढ़ेगा, लेकिन रोज गीता खोल के बैठ के वो रोता था, उसके आंखों से आंसू आते थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो साउथ इंडिया में उस मंदिर में गए, देखा तो आदमी बैठ के गरीब आदमी ब्राह्मण गीता को उल्टा पकड़ा हुआ है, सीधा भी नहीं पकड़ा, उल्टा पकड़ के देख के रो रहा है। तो महाप्रभु चैतन्य ने पूछा क्यों रो रहे हो, उसने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे गीता पढ़ने को कहा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे पढ़ने को नहीं आता है, मैं समझता नहीं क्या क्या लिखा है इसके अंदर, तो फिर क्यों तुम क्यों रो रहे हो, रोने का कारण क्या है फिर,
नहीं पढ़ने वाला, ठीक है? नहीं, जब मैं ये किताब खोलता हूं ना, तो खोलने के पहले उसका जो फ्रंट पेज है ना, फ्रंट पेज, उसके अंदर मैं देख रहा हूं कि परम भगवान कृष्ण, जिसको मैं मानता हूं, पूछता हूं, मेरा भगवान है, मैं उसका परम भगवान, वो परम पूज्य भगवान कृष्ण जो है ना, वो अपने भक्त जो अर्जुन है उसके सारथी बने हुए, ड्राइवर बने, ड्राइवर। और ड्राइवर बनने का मतलब क्या है, युद्ध में इतना आवाज होता है ना, तो सुनाई पड़ता है ना, यहाँ बोले राइट में लो, लेफ्ट में लो, बोलने का आवाज किधर आता है? एक ही तरीका है, उसको राइट में लात मारेगा तो वो राइट में टर्न करेगा, लेफ्ट में किक करेगा तो लेफ्ट टर्न करेगा, बीच में लात मारेगा तो सीधा जाएगा, यही होता है काम। इसी तरह से सारथी को योद्धा जो है वो बताता है क्या करना है उसको। मतलब अर्जुन ने भी भगवान को लात मारी होगी ना, राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, बीच में जाओ, फिर कभी घोड़े थक गए होंगे तो अर्जुन ने उसको, कृष्ण ने उसको चारा भी खिलाया होगा, जो भी कोई सर्वेंट करता है घर का, चारा भी खिलाया, कभी पहिया कभी फंस गया तो उसने भगवान ने तेल भी दिया होगा पहिए के अंदर, मतलब सारा जो आदमी नौकर करते हैं नौकर, सब भगवान ने किया है। यहाँ तक भगवान ने अर्जुन के घोड़े के थकने के बाद में उसके पैर का मसाज भी किया भगवान, सब वर्णन महाभारत में दिया है। तो बोलते मैं सोचता हूँ कि इतने बड़े भगवान हमारे, लेकिन फिर भी अपने भक्त पर इतना प्रेम करते हैं कि उसके लिए ड्राइवर बने हुए, शूद्र बने हुए, और एकदम फालतू काम कर रहे हैं, तो कोई आदमी नौकर भी कर सकता है, वो अपने भक्त के प्रेम की वजह से खुद कर रहे हैं। कितना प्रेम है अपना भगवान का अपने भक्त के ऊपर, ये सोचकर मुझे वास्तव में आंसू आ रहे हैं, कितने हमारे भगवान प्रेमी है। देखो आप अपने भक्त के लिए, जो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय है, युद्ध करने वाला है, शस्त्र से लोगों को मारने वाला आदमी है, लेकिन चूंकि वो मेरा भक्त है, इसलिए वो भगवान उसके लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये सोचकर मुझे बहुत हृदय में गदगद हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे भगवान कैसे कर सकते, इतने प्रेम कैसे कर सकते हैं भगवान भक्त के ऊपर। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमको पूरा गीता का सार समझ में आया है, तुम शायद श्लोकों को पढ़कर एक एक करके समझ में नहीं आता होगा आपको, लेकिन पूरी गीता में भगवान ने क्या बताना चाहा वो तुम समझ गए, तुम सबसे बड़े गीता के पंडित। तो इसका मतलब नहीं समझो कि आपको पूरा श्लोक याद रहना चाहिए, जैसे मैं कुछ भी कुछ बोल रहा हूँ वैसे सारे श्लोक आपको बोलने आना चाहिए, मुझे भी नहीं आता है, मैंने कभी भी स्कूल में संस्कृत नहीं सीखा, मेरे स्कूल में कॉलेज में किधर भी संस्कृत नहीं था, जो भी संस्कृत मैं भी बकबक करता हूँ यहाँ पर, वो केवल प्रभुपाद की गीता और बाकी सारी किताब पढ़कर ही मैं सीखा हूँ। इतना आसान बना के छोड़ दिया उन्होंने कि हम भी बोल सकते, आप भी बोल सकते और सीख सकते क्या बोलना चाहते हो। तो ये सार है उसका, इसलिए मैं आपको विनती करूंगा, ये महीने में भगवान ने गीता बताई, अगले रविवार के दिन युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई है, उसके बाद में 18 दिन तक युद्ध हुआ, 9वें दिन में विष्णुदेव का गिर गए विष्णुदेव, फिर और 9 दिन युद्ध हुआ, फिर महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में फिर 14 जनवरी को क्या हुआ, मकर संक्रांति, उस दिन विष्णुदेव का देहांत हो गया भगवान के सामने। युद्ध होने के बाद में फिर वो राजा बने, सब लोग राजवस्त्र पहन के रथ में बैठकर आए, कृष्ण भी उनको लेकर आए, और कृष्ण को देखते हुए 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन विष्णुदेव का शरीर छूटा, ऐसा सिक्वेंस है। तो भारत में जन्म लेकर जहाँ भगवान की भक्ति प्रधान है, जहाँ सब धर्म के आचार्य मसीहा भगवान के बच्चे पुत्र भगवान के आचार्य महात्मा जन्म जन्म लिया है, इस भूमि का सबसे बड़ा शास्त्र है भगवत गीता, तो भगवान के श्री मुख से उसका वर्णन हुआ, बाकी सब तो भगवान की कहानियां हैं जो बाकी लोगों ने बताई हुई है, लेकिन ये जो है वो भगवान की श्री मुख से आया हुआ ज्ञान है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट नॉलेज है। ये समझने के लिए ही तुमको और हमको भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, मनुष्य का शरीर वो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, बहुत पैसा बनाने के लिए वगैरह नहीं दिया है, मनुष्य का शरीर दिमाग इसलिए दिया है कि हम भगवान के द्वारा कहे गए उपदेशों को समझ सके, और समझाने के लिए तो महात्मा जन है उसको आसान भी कर देंगे, उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अभी क्या कह सकते हैं। हम पिताजी ने स्कूल में एडमिशन दे के दिया है, डोनेशन भी भर दिया है, हाँ यूनिफॉर्म भी दे दिया, अच्छा बढ़िया सा दो चार सेट बना के दिए उसको, जूता भी दे दिया, लाके पेंसिल भी ला के दिया, पेन ला के दिया, दफ्तर ला के दिया, नोटबुक ला के दिया, किताब ला के दिया, जाने आने के लिए बस का व्यवस्था भी किया, स्कूल का फी भी भर दिया, फोटो निकाल के कार्ड बना दिया उसका पूरा, एवरीथिंग पिताजी ने कर दिया पूरा अपनी तरफ से, अच्छे स्कूल में सब कुछ डाल दिया। अभी बच्चे को स्कूल जाना है बस और पढ़ना है, बच्चा बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पढ़ने को इंटरेस्ट नहीं, खेलने में इंटरेस्ट है, तो कोई बात नहीं, ये बैट ले बॉल ले, शाम को खेल, सुबह स्कूल जा, यानी कि दिन भर खेल रहे, तो और क्या कर सकते पिताजी, सब कुछ किया पिताजी ने, खुद मेहनत किया, खुद धन कमाया, खुद उसको सब कुछ एडमिशन दिला दिया, सब कुछ जो बेस्ट जो है वो सब किया उसने। लेकिन अभी जैसे घोड़ा पैसा था तो उसको घोड़े वाला आदमी ने नदी के पास लेके गया, बोला ये नदी है ये पानी है पी ले, मुझे पानी नहीं पीने का है, मुझे कोई मुंह में डाल गया डालेगा तो मैं निगल दूंगा, ऐसा बोलेगा तो क्या फायदा। मराठी में कहावत, इंग्लिश में भी कहावत है, आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हो लेकिन पानी तो नहीं पिला सकते हो, पानी तो खुद पीना है उसको। इसी तरह से भगवान ने तो गीता बोल दिया, द्रौपदी ने उसको धन्यवाद भी कर दिया, सिंपल भी कर दिया, आपको बोला ये ले वो, अभी दिसंबर का महीना है डिस्काउंट भी मिल रहा है तो ले लो, सात भर में इतना कॉस्ट है, दिसंबर में बहुत सस्ता मिल रहा है ताकि सब लोग उसको ले सके, और नॉलेज फ्री है उसका फायदा भी, हाँ कॉस्ट किसकी है, पेपर बाइंडिंग पब्लिकेशन छपाई छपाई इसका कॉस्ट है, नॉलेज जो अंदर दिया है ना वो सब फ्री है, क्योंकि भगवान ने उसको फ्री में दिया था अर्जुन को, तो हम लोग कैसा उसको बेचेंगे। नॉलेज भगवान का फ्री में है, लेकिन भगवान ने मुंह से बताया था, हम लोग किताब में आपको दे रहे रिकॉर्ड करके उसको अनुवादित करके उसका अनुवाद का मीनिंग मीनिंग सब समझा बुझा के आपको दे रहे हैं, उसका प्रिंटिंग कॉस्ट है वो भी डिस्काउंट में दे रहे हैं, कम से कम ले लो उसको, हाँ एक मोबाइल लेंगे ना आप, एक कोई लेंगे तो कितना खर्चा आता है, कम से कम सस्ते से सस्ता एकदम थर्ड क्लास मोबाइल 800 में लगेगा ना उसको, 900 में लगेगा ना, तो मिनिमम कितना में फालतू कार्ड लेंगे एकदम क्या कहते हैं उसको सिम कार्ड, तो कितना खर्चा आता है उसको, 300 रुपये तो खर्चा आएगा ना उसको मिनिमम, तो एक भंगी भी रहेगा जो भिखारी रहेगा उसको इनकम ही नहीं कुछ, गरीब आदमी है कोई मोबाइल लेके आते बोलता है हेलो हरे कृष्णा हाउ आर यू, और अपने गड्ढे में जाएगा वो खोदा खोदा ही कर रहा है, गड्ढे में भी फोन से बात कर रहा है, अपने दूसरा गड्ढे में जो आदमी हुआ ना दूसरे साइड पे उससे बात कर रहा है, तुम कौन से गड्ढे में, वो मेरा तो गड्ढे में, मैं गांधीवली के गड्ढे में रोड वाले गड्ढे में, कोई बात कर रहा है खर्चा करके बात कर रहा है, सबके पास मोबाइल है, लेकिन गीता ने को बोले बोले मुझे 55 रुपया 90 रुपया बहुत महंगा है, वही आदमी रोज 50 रुपये की शराब पिएगा हर रोज रात को टाइट होकर सो जाएगा, और 20 रुपये की बीड़ी भी पिएगा दो बंडल दिन रात, थोड़ा वो कौड़ा मारेगा एकदम मारेगा फिर दो कौड़ा मारेगा बस। लेकिन मनुष्य जीवन वो दारू पीने के लिए मोबाइल बात करने के लिए शराब पीने के लिए नहीं है, भगवान हमसे क्या बताना चाहते हैं और क्या हमारे लिए उपदेश है वो समझने के लिए मनुष्य जीवन है, और इसलिए ये गीता अभी 150 रुपये की जो है हमें 90 रुपये मिल रही है, 90 में क्या होता है आजकल एक मार्केट में धूम के आए ना ऐसे इधर उधर तो 100 रुपये उड़ जाते हैं पता नहीं चलता क्या हो रहा है, केला 50 रुपये डजन हो गया अभी क्या करेंगे हम, लेकिन एक भगवत गीता जो है अमूल्य ज्ञान है चिरंतन ज्ञान है, वो हर हर आदमी के घर पे होना चाहिए, और केवल होना नहीं चाहिए उसको पढ़ना भी चाहिए, अपने वो बुक शेल्फ की शान बढ़ाएगा तो लाभ क्या उसका, इसलिए आप सबको तो विनती करता हूं कि ये महीने में जो डिस्काउंट में गीता मिल रही है आप सबको तो उसको पढ़ो, उसके अंदर भगवान क्या बताना चाहते हो समझो, नहीं समझ में आए तो हमको आके पूछो कि इसका मतलब क्या है, जितना हमारे समझ में आए उतना हम आपको बता देंगे, इतना नहीं आया हम इसको पूछेंगे और फिर आपको बताएंगे, लेकिन जो भी हमको पता है उतना बता देंगे आप, और जो भगवद गीता के ऐसे शास्त्र में भगवान ने अलग शास्त्र बताया उसके बारे में महात्म्य होते हैं, हाँ ग्लोरी सब भगवदगीता गीता महात्म्य, तो गीता महात्म्य में लिखा गया है शंकर भगवान पार्वती को बता रहे हैं कि भगवद गीता के 700 श्लोक में से एक श्लोक का एक चौथाई हिस्सा अगर आपको समझ में आया, 700 में से एक श्लोक का 1/4 हिस्सा आपको समझ में आया आपको, और आपने उसको जीवन में उतारने का प्रयास किया तो आपका भगवत धाम में जाना निश्चित है, ऐसा शंकर भगवान पार्वती को बता रहे हैं कि ये गीता इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरा समझ में आया तो चलेगा नहीं चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक 1/4 भी हिस्सा आपको समझ में आना एक श्लोक का और जीवन में आपने उसको उतारा प्रैक्टिस करने का प्रयास किया उसको, उतना केवल करने से और उसमें सफल भी नहीं होंगे आप, आप कोशिश कर रहे हैं उसको उतारने के जीवन में, केवल कोशिश ही कर रहे हैं कि मैं उसको उतारूं जीवन में, वो कोशिश भी करेंगे ना, तो इस जीवन के अंत में भगवान आपको अपने घर में लेके जाएंगे। इतनी शक्ति है उसके अंदर, और क्या चाहिए आपको डिस्काउंट बताओ। इतना डिस्काउंट दे दिया भगवान ने, ऐसा नहीं कहा कि जो गीता का पंडित है तो मरने के समय पूरा 700 श्लोक याद करके मेरे सामने बोल के दिखाएगा, उसको इंटरव्यू बनाकर, ऐसा नहीं भगवान ने बताया कि मैं वैकुंठ तक लेके जाऊंगा, गेट पे खड़ा करूंगा, आपको पूरा रिकॉर्डिंग करूंगा, 700 श्लोक बराबर बताइए बिना मिस्टेक के, तो एंट्री अंदर, ऐसा नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया कि आपको याद होने चाहिए, संस्कृत के पंडित आप होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ब्राह्मण मूल का होना चाहिए, कभी भी नहीं बताया। बोलेंगे फॉलो करके जो मेरा भक्त बनेगा उसको मैं देख लेगा, और भक्त बनने के लिए ना अमीर होने की जरूरत है, ना पढ़ने पढ़ने लिखने की जरूरत है, वो प्रामाणिक हृदय से भगवान की भक्ति करता है, भगवान के संदेश को समझता है, भगवान अपने घर ले जाता है। दोबारा यहाँ आने आना पड़ता है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी चक्र में फंसने के लिए, दर्शा आने के लिए, कष्ट भोगने के लिए यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ती उसकी, ऐसे व्यक्ति को गरीब हो अमीर हो बूढ़ा हो जवान हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, आदमी हो इंसान हो स्त्री हो पुरुष हो, जो व्यक्ति भगवान के संदेश को समझने का प्रयास करता है, पकड़ लेता है और जीवन में उतारता है, उसको भगवान बड़े प्रेम से अपने सोने के रथ पर बिठाकर अपने दूतों के साथ में बड़े गीत गाते हुए अपने धाम में लेके जाते हैं। और क्या चाहिए बताओ, इससे बड़ी और डिस्काउंट क्या चाहिए हमको। इसलिए मैं आपको सबको विनती करता हूँ, पुरानी समय मैंने लिया लेकिन गीता जयंती आ रही है, इसलिए हमको निश्चय करना चाहिए, हम सबके घर में एक गीता होनी चाहिए, और एक गीता हम सब लोग घर में माता पिता बच्चे नाना नानी सब बैठकर उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए क्या लिखा है उसके अंदर, कम से कम ये लाइफ खत्म होने के पहले वो पूरा पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल है। और जो मेहनत प्रभुपाद ने रात रात को जगकर अनुवाद करने में किया वो भी सफल हो जाएगा ना, वो बेचारे रात को 11 बजे उठते थे, वो 4 बजे तक सुबह जगकर रात के अंधेरे में सब लोग सो रहे शांति में उसका अनुवाद करते थे, ताकि हम जैसे लोग बाद में पढ़ेंगे उसको। और वो एक गीता की वजह से अभी आज 55 पहले भाषा में हुआ अनुवाद उसका, बाद में 80 भाषा में हुआ है, और देश देश में शहर शहर में लोग वो गीता पढ़कर अपना जीवन बदल रहे हैं। रशियन कंट्री के अंदर एंट्री देता उसके लिए, चाइना में आज भी एंट्री दी हांगकॉन्ग में, लेकिन फिर भी तुम्हारी हमारी गीता जो है ना वो लोग स्मगलिंग करके पढ़ते हैं, और स्मगलिंग करके वो लोग भक्त बने हुए हैं और गुप्त रूप में हरे कृष्णा का भजन करते हुए चाइना के लोग, वहाँ मंदिर नहीं है ना कोई छापने का, वहाँ अलाउड है आपको कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर लोग वहाँ सांप मच्छर कॉकरोच सब खाते हैं, ऐसे लोगों का जिंदगी उधर, ऐसे देश में एक एक गीता स्मगलिंग करके 50-50, 100-100 लोग पढ़ते हैं, फटाफटाना जो सामान मैंने पढ़ लिया आपने पढ़ लिया उसको करके तुम्हारे हाथ में पहुंचेगा, तभी वो पूरा पुराना होगा, क्योंकि उसको पढ़ेगी बाइंडिंग करके चिपका चिपका के पढ़ेगी उसको, और जीवन को परिवर्तन किया है। और हम लोग हम तो इंडियन है, हम जानते हैं गीता में क्या लिखा, ब्रह्मण्यवादी का रस सब जानते हैं, इसको ऐसा गर्व से कहते हैं, लेकिन फिर वीडियो शराब पीते हैं, विचार करते हैं, तो वो लोग विचार करने वाले लोगों में से हैं, वो सब छोड़कर भक्त बनकर भारत की यात्रा करने में आते हैं, वृंदावन मथुरा मिलते हैं, और केवल लाइफ में एक बार धोती कुर्ता पहनते हैं वो लोग, क्योंकि उनके देश में धोती कुर्ता पहनने का अलाउड नहीं है, जब इंडिया में आएंगे तीर्थ यात्रा करने के लिए वृंदावन में तो धोती कुर्ता पहन के तिलक लगाकर मंदिर में जाएंगे मंगल आरती करने के लिए, और धोती कुर्ता यही छोड़कर फिर चाइना में वापस चले जाएंगे, इतना डिफिकल्टी में फॉलो कर रहे हैं, उनका धर्म भी नहीं है, और हमारा तो ये प्रॉपर्टी है, और वो गीता हमारे देश की है, हमारी गीता है, और हम उसको 90 रुपये लेकर भी खरीद ले सकते हैं, वो लोग जीवन उसको निछावर कर सकते हैं, और हम लोग अपना होकर भी घर की मुर्गी डैश डैश डैश, ये हमारी स्थिति है, क्योंकि हम हमारे ही धन को पहचानते नहीं, बाहर के लोग उसको पहचानते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, तो वो सब लोग जाएंगे भगवान के धाम में सोने के रथ में बैठकर, और हम लोग दोबारा खटारा में बैठकर यहीं पर आएंगे, गले गले बैठे टूटे हुए इधर ही आएंगे धक्का खाने के लिए, वो बोलेंगे हम भारतीय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब कुछ जानते हैं, धर्म का अर्थ हम समझ चुके हैं, लेकिन रहेंगे इधर ही वही करते रहे। ओके, हरे कृष्णा कृष्णा।